मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 11 मई 2017 है और आज के इस AFEIS.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी अपने मित्रों का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा इस बात के लिए कि बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आप सबकी ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी पूरी की पूरी एकेडमी की टीम को, मैडम प्रीति अग्रवाल को और मुझे प्राप्त हुई हैं। और इनफैक्ट मैं आप सबकी इन शुभकामनाओं को आप सबके सम्मान स्नेह और इनफैक्ट हालांकि आप में से बहुत लोग उम्र में छोटे होंगे आशीर्वाद के रूप में लेता हूं, और वह इसलिए क्योंकि ये शुभकामनाएं कहीं न कहीं काम तो करती ही हैं और कुछ इस तरह से काम करती हैं कि वो कभी कभी अपना चमत्कार दिखा जाती हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आशीर्वाद। मित्रों, बात हम चूंकि बुद्ध पूर्णिमा की कर रहे हैं तो मुझे लगा कि इसी तथ्य को लेकर के आज लाइफ मैनेजमेंट में कुछ चर्चा की जाए, और चर्चा में इस बात से करना चाहूंगा। आपको ध्यान होगा कि परसों अपने लाइफ मैनेजमेंट में मैंने जो आप सबके प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए ईश्वर से प्रार्थना की थी, वह विवेक के लिए प्रार्थना की थी कि हे ईश्वर, हम सबको विवेक प्रदान करो। दोस्तों, आज मैं थोड़ा सा विवेक पर ही बात करना चाहूंगा। हालांकि मुझे कुछ ऐसा ख्याल आ रहा है कि इससे पहले इस इशू पर बात की जा चुकी है, लेकिन बात तो एक ही इशू पर अगर 10 बार की जाए तो कुछ न कुछ नया निकल ही जाता है। तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने इसे सुना हुआ हो, और लेकिन साथ ही साथ यह भी हो सकता है कि आज कुछ नई बात निकल आए। तो आइए दोस्तों, हम थोड़ा सा विवेक पर बात करते हैं। विवेक पर बात करने का इनफैक्ट मैंने फैसला इसलिए भी किया है कि बहुत से जो लोग होते हैं उन्हें थोड़ा सा इस बात का भ्रम होता है या स्पष्टता नहीं होती है कि इनफैक्ट क्या विवेक और ज्ञान में कोई फर्क है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि ज्ञान को ही हम विवेक मान लेते हैं। जैसे कि हम एक शब्द कहते हैं बुद्धू, मूर्ख, तो जिसे हम बुद्धू कहते हैं, जिसे हम मूर्ख कह रहे हैं, उसका मतलब यह है कि वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। हालांकि देखिए, जो बुद्धू शब्द है, पता नहीं हम लोगों ने कैसे चुन लिया है। मुझे लगता है कि ये शब्द कहीं ना कहीं बुद्ध से ही आया है। बुद्ध यानी कि बुद्धि, बुद्ध यानी कि बुद्धत्व, और कहां बुद्ध और कहां बुद्धू, पता नहीं ये शब्द हमने कैसे ले लिया। खैर, तो हमें यह लगता है कि अगर हम इसके विरोध में जाकर के देखें कि जो व्यक्ति बड़ा पढ़ा लिखा होगा, ज्ञानी होगा, जिसके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां होंगी, PhD और पता नहीं क्या क्या, वो बड़ा विवेकशील होगा, है ना, वो बड़ा समझदार होगा, ऐसा हम मान लेते हैं। और सच पूछे तो हम एक्सपेक्ट भी करते हैं कि वह ऐसा होगा, और काफी कुछ मामलों में ये सही भी होता है। ऐसा नहीं है कि जब हम पढ़ाई लिखाई करते हैं तो हमारी चेतना में एक रूपांतरण होता है, चीजों को अलग तरीके से देखने का एक नजरिया विकसित होता है, हम देश दुनिया समाज के बारे में जानते हैं, प्रकृति के बारे में जानते हैं, तो इसका कहीं ना कहीं तो एक सकारात्मक प्रभाव, एक रचनात्मक प्रभाव हमारे चिंतन पर पड़ता है। और यही चिंतन फिर हमसे ये अपेक्षा करा देता है कि नहीं, ये पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो एक बेहतर व्यक्ति होगा। लेकिन मित्रों, आप उस समय क्या करेंगे, क्या देखेंगे, क्या निष्कर्ष निकालेंगे जब हम कभी कभी ये भी देखते हैं कि जो बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, नो डाउट कि वो जो अपना काम कर रहे हैं, जिस प्रोफेशन में लगे हुए हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, उसमें उनकी प्रतिष्ठा है और बहुत जबरदस्त रूप से उन्हें सफलता भी मिल रही है। लेकिन दूसरी ओर हम जब देखते हैं कि जब उनके व्यक्तिगत जीवन पर जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहां ज्यादातर क्षेत्रों में उसे असफलता मिल रही है, वहां वो बहुत बेहतर स्थिति में नहीं, बहुत कंफर्टेबल नहीं है, या यूं कह लीजिए कि प्रोफेशनली तो वो बहुत अचीव कर रहा है लेकिन इंटरनली अपने आप में ही वो द्वंद से घिरा हुआ है, परेशानियों से घिरा हुआ है, उसे मजा नहीं आ रहा है, वो संतुष्ट नहीं है। इस तरह की चीजें भी एक ही व्यक्ति में अंदर और बाहर जब हम झांकते हैं तो देखने को मिल जाती है। देखिए, अगर ऐसी चीज दिखाई दे रही है कि अंदर असंतोष है लेकिन बाहर बहुत ही संतोष का, ऐसा लगता है जैसे साम्राज्य बिखरा पड़ा है, तो ये मान करके चलिए कि उसमें ज्ञान तो बहुत है, बुद्धिमान तो बहुत है वो, लेकिन कहीं ना कहीं विवेक का अभाव है। इसीलिए इंग्लिश में अगर हम इसे कहना चाहें तो दो हमारे सामने पास बिल्कुल स्पष्ट शब्द हैं। ज्ञान को हम कहते हैं नॉलेज, राइट, और जो विवेक होता है फ्रेंड्स, उससे हम कहते हैं विजडम। विजडम, अब ये बात अलग है कि इस विजडम को, इस नॉलेज के जरिए कितना पाया जा सकता है। तो आप नॉलेज को एक तरीके से दूध मान लीजिए कि अब ये दूध तो आपके पास आ गया, और अगर आपके पास दूध नहीं होगा तो आप मक्खन नहीं निकाल सकते, और जब तक मक्खन नहीं होगा तब तक आप घी नहीं बना सकते, ये तो हम चलिए मान लेते हैं। तो आपके पास दूध होना अनिवार्य है, लेकिन दोस्तों जो विजडम होता है उसके बारे में थोड़ी सी बात अलग हो जाती है। अलग ये हो जाती है कि जिसे हम दूध कह रहे हैं हमें उस दूध को फिर एक नए तरीके से देखना होगा। जब हम ज्ञान की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में ज्यादातर जो चीजें आती है वो किताबें आती हैं, पाठ्यक्रम आते हैं, क्लासेस आती हैं, डिग्रियां आती हैं कि वो कितना पढ़ा लिखा है, तब हमें लगता है कि इसके पास ज्ञान होगा, तो इसे हम दूध मान लेते हैं। लेकिन इस दूध को हमें थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, इसे व्यापक बनाना पड़ेगा, और वह हो जाता है एक्सपीरियंसेस, अनुभव। अनुभव भी एक प्रकार का ज्ञान ही है, बल्कि ज्ञान क्या है, मुझे तो लगता है कि शायद वो किताबी ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण ज्ञान है। देखिए, किताबी ज्ञान तो गौतम बुद्ध के पास कम नहीं था, बहुत ज्ञानी थे इस मायने में तो वो। और आप देखिए कि जब वो अपना घर बार छोड़ करके निकलते हैं तो कितने गुरुओं के पास जाते हैं, उस समय के जितने प्रसिद्ध गुरु थे उनसे वो ज्ञान प्राप्त करने जाते हैं कि उनकी जो जिज्ञासा है वो जिज्ञासा शांत हो सके, और उन्हें कहीं संतुष्टि नहीं मिलती, यानी कि वो खुद में उतने ज्ञानी रहे होंगे कि उनको कुछ नया मिल ही नहीं रहा था। तो जब ज्ञान था तो फिर उसी से उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति क्यों नहीं हो गई, उसका कारण यह था कि उनके पास अनुभव नहीं थे। बाद में उनके पास अनुभव आए, और आपको मालूम है कि उनके पास अनुभव आएंगे कहां से, क्योंकि राजमहल में जिस तरीके से उनकी परवरिश की जा रही थी, उन्हें किसी दुखी व्यक्ति से मिलने नहीं दिया जाता था, राजमहल से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, क्योंकि उनके बारे में ज्योतिष की भविष्यवाणी थी कि ये व्यक्ति तो संन्यास ले लेगा। तो उनके पिता माता स्वाभाविक रूप से चिंतित थे कि भैया इसको जाने ही मत दो, इसको पूरी तरह से सुख सुविधाएं ऐश्वर्य में रखो कि इसी में खो जाए। और ये हमारे देश की संस्कृति थी, या कह लीजिए कि हम सबका सौभाग्य था कि वो उसमें नहीं खोए। तो ज्ञान उनके पास था, लेकिन चूंकि जीवन का अनुभव इन सब की वजह से नहीं मिल पाया था, तो जैसे ही वो अनुभव लेते हैं उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हो जाती है। आप देखिए कि उसमें जो मैंने इससे पहले आपको बताया भी था कि अंत में जो सुजाता की खीर खाते हैं वह भी कहीं ना कहीं वो जीवन के अनुभव का ही प्रतीक बनता है। तो मित्रों, मैं खासकर जो ये बात कहना चाह रहा हूं जो आप लोगों से, वो ये कि हमारे पास ज्ञान है लेकिन ज्ञान की एक सीमा है, अनुभव उससे बड़ा होता है और विजडम उससे बड़ा होता है। विजडम और अनुभव में फर्क यह है दोस्तों कि जब हम अपने अनुभव का लाभ उठाते हुए अपने निर्णय लेने की प्रोसेस को सुधारते चलते हैं, और हमारे जब निर्णय ज्यादातर सही होने लगते हैं तो हमें मानना चाहिए कि अब हमारे अंदर विजडम की किरणें झिलमिलाने लगी है, विजडम पैदा हो गया है। दरअसल ज्ञान और विवेक में जो मूल फर्क है वो निर्णय लेने की क्षमता का ही फर्क है। मेरे पास ज्ञान है, मैं बहुत बघार सकता हूं, अपनी ज्ञान से मैं सामने वाले को आतंक कर सकता हूं, तर्क के तीर से काट काट करके सामने वाले को मैं धाराशायी कर सकता हूं, लेकिन हो सकता है कि निर्णय लेने की क्षमता मुझ में बिल्कुल भी ना हो, और जब तक मेरे पास अनुभव नहीं होंगे तब तक मैं सही निर्णय नहीं ले सकता। निर्णय तो मैं लूंगा ही, अगर जरूरत होगी तो मैं निर्णय लूंगा। तो निर्णय कैसे आप लेते हैं, निर्णय आप अनुभव से लेते हैं। जिंदगी भर हम निर्णय लेते चलते जाते हैं, एक निर्णय लेते हैं, बहुत सोच समझ कर निर्णय लेते हैं, यानी कि उस समय जो हम बेस्ट डिसीजन ले सकते थे हम वही बेस्ट डिसीजन लेते हैं, लेकिन आगे जाकर के हम देखते हैं कि कुछ समय के बाद हमारे वो निर्णय तो बिल्कुल उलट गया है, मतलब वो काम ही नहीं कर रहा है, और हम अफसोस करते हैं काश हमने उस समय यह निर्णय ले लिया होता। अफसोस करने का कोई कारण नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर हम उस समय वह निर्णय लेने की स्थिति में होते तो ले चुके होते, अफसोस का कोई कारण ही नहीं है। लेकिन हमने ये निर्णय लिया, अब अनुभव के आधार पर हम देखते हैं कि उसके परिणाम सही नहीं निकले। विजडम यहीं से आता है कि जब हम देख लेते हैं कि परिणाम सही नहीं निकला है तो फिर हम अपने निर्णय पर विचार करते हैं, और हमें यूं कह लीजिए कि एक सूत्र मिल जाता है, जीवन का एक सिद्धांत हमारे हाथ में आ जाता है, और वो यह कि निर्णय इस तरीके से अगर लिए गए तो परिणाम सही नहीं होंगे, इस तरीके से निर्णय लिया जाना चाहिए था। लेकिन यह सूत्र तब पकड़ में आएगा जब हम अपने निर्णय लेने के बाद जब परिणाम हमारे सामने आ जाते हैं तब हम उन निर्णयों की समीक्षा करें, उन पर विचार करें, उनके विकल्पों के बारे में सोचें कि हम और क्या क्या सोच सकते थे, क्या क्या निर्णय ले सकते थे। भले मैंने ये बात कही कि अगर हम ले सकते होते तो हम ले चुके होते, वो ठीक है, लेकिन आप विकल्पों को तो अपने दिमाग में डालिए कि नहीं, हम मुझे ये करना चाहिए था, ये निर्णय लेना चाहिए था। और निर्णय लेने के बाद इस पर भी विचार कीजिए कि अगर मेरा निर्णय गलत हुआ है तो याद रखिए कि इसकी जिम्मेदारी सिर्फ निर्णय पर नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप दूसरा निर्णय ले लेते तो वो निर्णय सही ही हो जाता। नॉट एट ऑल। हमने निर्णय लिया है, उस निर्णय को सही सिद्ध करने की जिम्मेदारी भी हम पर होती है। हमने निर्णय तो ले लिया, आपने निर्णय ले लिया मैं ये बनूंगा, ये करूंगा, आपने गलत नहीं लिया, लेकिन अब आप वैसा जब करेंगे तभी तो जाकर के वो निर्णय फलीभूत होगा, वह सही उतरेगा। सोच लेने से तो नहीं हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमने निर्णय ले लिया और समय बीतता चला गया और जैसे ही समय पूरा हुआ वह निर्णय साकार रूप ले लेगा, परिणाम देने लगेगा, फल आ जाएंगे, सवाल ही नहीं होता है। अगर मैंने एक पेड़ लगाने का फैसला किया है, एक पौधा लगाने का फैसला किया है और उसका उस बीज रोप दिया है तो बीज रोपने से ही तो वो पौधा नहीं बन जाएगा और फल नहीं देने लगेगा। मुझे उस पूरी के पूरी प्रोसेस को समझना होगा और लगना पड़ेगा। अगर मैं उसमें कहीं भी खाली रह जाऊंगा, कहीं भी मैं गलती कर दूंगा, कहीं भी गैप आ जाएगा तो उसके परिणाम उलट जाएंगे, चीजें वही उसी रूप में नहीं आएंगी जिस रूप में मैंने सोचा था। तो दोस्तों, जो याद रखिए कि जो विवेक है वह इनफैक्ट एक ऐसा इक्विपमेंट है, हमारे हाथ में एक ऐसा उपकरण है जो हमें सही सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। वह हमारे जीवन का आधार होता है, हमारे सबसे बड़ी ताकत होती है। इसलिए दोस्तों, मुझे लगता है कि हम सब जो दूसरों की तुलना में थोड़े से ज्यादा पढ़ लिख लिए हैं किसी वजह से, कभी इस अहम में न रहें, इस भ्रम में न रहें कि हम ही सब कुछ जानते हैं और हमारा ही कहा और जाना हुआ सही जाना हुआ है और संपूर्ण जाना हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि जिनके पास अनुभव का खजाना है उनके पास ज्ञान के मामलों में व्यवस्थित रूप नहीं है कि वो ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री पर हमारे जैसी बातें कर सकें, लेकिन हो सकता है कि उनके पास जीवन का खजाना इतना समृद्ध हो कि उसके सामने हम बेहद बौने हों। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखा जाना चाहिए। तो मित्रों, अब वक्त हो चुका है, मैं अब अपने आज के इस टॉपिक को यहीं समाप्त करने की आप सबसे अनुमति चाहूंगा। नमस्कार।